इसलिए उनको कोई पूछने की जरूरत नहीं बोलती। राजा को जरूरत होती वो पूछता हमसे जी ये सेवा करनी है जगन्नाथ जी की। उन्होंने कहा जी हमारे घर में ही आप रहिए। महापुरुष जी को ले आकर के उन्होंने कहा जी हम घर में नहीं रहेंगे, हमारे लिए छोटी सी कुटिया रहनी चाहिए। अधिक वही गंभीरा थी, उसमें एक आदमी मुश्किल से खड़ा हो सकता है और लंबाई में थे वैसे भी, उसमें दो आदमी रह नहीं सकता, मुश्किल से एक दो आदमी बैठ सकता। निर्जन चाहते थे कि जब महाप्रभु आ गए तो वो निर्जन रहा कि नहीं,
परिकर साथ है।
और जितने महाप्रभु के भक्त सबको निकट ही में ये दिया गया। हरिदास ठाकुर ये दीवाल टिवाल नहीं थी उस समय, पीछे पीछे ही है वो बकुल कला। क्या
सिद्ध
पासी आचे हम लोग को उधर से घूम करके जाना पड़ता है, पहले ऐसा नहीं था,
पहले सब इंटरकनेक्टेड
इधर से घूम चले आ जाते। अब तो ये घर तर बन गए थे। और वहीं पर रूप सनातन जी आकर के ठहरते जी हम लोग भी दीनहीन हैं, कंगाल हैं, मुसलमान हो गए हमके स्पर्श से, इसलिए वो ऐसे ही जो लोग आते थे दीनहीन वो वहाँ ठहरते। और ये यहाँ स्वरूप दामोदर जी रहते थे, हमारे सिद्धांति महाराज जी का जहाँ मठ है वहाँ पर ठहरते थे। और अलग अलग सब लोग रात में अच्छी तरह से भजन कर सकें, और निश्चित समय होता वो महाप्रभु जी के पास में आकर के यहीं पर लोग बैठ जाते। बड़ी भारी राजसभा जैसी बनती थी, महाप्रभु बीच में बैठते थे और भक्त लोग सब चाहते। रात में किसी से बातचीत नहीं, बस गंभीरा में महाप्रभु जी की, कृष्ण की, राधा जी के लीलाओं को स्मरण कर। बतलाया ना जैसे एक दिन समुद्र में कूद गए, एक दिन चले गए जगन्नाथ वाटिका में, ना जाने कैसे दरवाजा बंद और वहाँ पर पहुँच गए। एक दिन महाप्रभु जी ऐसा भाव आया भागवत का, गोपियाँ जैसे कृष्ण के विरह में छटपट करती हैं ऐसे छटपट कर रहे हैं, और उनको राय रामानंद और स्वरूप दामोदर जी उनके कृष्ण करणामृत का श्लोक, राय रामानंद के जगन्नाथ
बल्लभ नाटक
नाटक का कुछ श्लोक, चंडीदास गीत गोविंद, मैथिल कवि
विद्यापति
विद्यापति के गीत और श्रीमद् भागवत के ऐसे ही से सुंदर श्लोकों को सुना करके और उनके भावों की उद्दीपना करते थे। दीपना माने क्या, मन में जगाते थे। एक दिन 12 बजे रात हो गई, रात हो जाने के बाद में गोविंद जी को रख करके और गोपाल गुरु को रख करके वो लोग अपने स्थान में चले गए और बोल दिया है ये गंभीरा के गेट पर तुम लोग सो रहे, रात में कहीं ये निकल न जाए, खूब अच्छी तरह से पहरा दे। वो लोग पैर दबाने के बहाने और वहीं पर सो करके रहे। और इधर न जाने क्यों कब महाप्रभु को नींद नहीं आती थी, भक्तों को ही नींद नहीं आती तो उनको, उन्होंने सुना जब कृष्ण की बंसी बजी, भाव नेत्र से सुना बंसी बजी और ये रह नहीं सके घर में, भावावेश में नहीं जाने कैसे ये गेट, यहाँ का गेट, वहाँ का गेट, घर का गेट, सभी को पार कर गए और पार करके चले गए जगन्नाथ बल्लभ वाटिका में और वहाँ पर भावावेश होकर के गिर गए। ये लोग रात भर खोजते रहे, सवेरे पता लगा जी वहाँ पर हैं, वहाँ पर गए उनको ले आया भावावेश में ही, फिर लेकर के कीर्तन किया तो थोड़ा सा होश आया। महाप्रभु जी रोने लग गए। तीन अवस्था होती है महापुरुषों की, तीन अवस्थाएं होती हैं, अंतरदशा, अर्धबाह्य दशा और
बाह्य दशा।
अंतरदशा में कुछ ज्ञान नहीं, वृंदावन में गए हैं अंतरदशा। महाप्रभु जी का अधिकांशतः यही भाव। अर्धबाह्य अवस्था ये भीतर वाला सब कुछ स्मरण है, अभी बाहरी जगत को अभी थोड़ा थोड़ा भी होश है और उसका पूरा है, इधर थोड़ा थोड़ा इस दोनों मिलकर के हुआ अंतर बाह्य दशा।
प्रहलाद वर्णन करते हैं
और उस समय में विरह में देख रहे हैं जब मैं कहाँ आया, किंतु इस जगत में आया ये होश नहीं। उस समय कौन सुन रहा है कि नहीं, अपने सखियों को सुना करके रोते हैं, विरह में तड़पते हैं। और बाह्य अवस्था में देखते अभी कहाँ मैं था, कहाँ चला आया, और छटपट करने लगते हैं।
पुरानी याद तो रहती है।
हाँ, तो वो थोड़ी थोड़ी सी याद रहती है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं हमको कहाँ तुम लोग लाए, मैं तो वृंदावन में था। वृंदावन में था, कहाँ ले आया। मैंने सुना चंद्र उदित हो गया और कृष्ण ने बांसुरी बजाई, हमारे नाम की बांसुरी बजाई। प्रत्येक गोपियां ये समझती हैं कि हमारे नाम की ही बांसुरी बजती है। ललिता समझेंगे ललिता, विशाखा विशाखा, राधा राधा, सभी लोग
हमारे नाम को राधा नाम की।
जो मैंने महाप्रभु सोच रहे हैं जिस समय तो राधा जी हैं, इसलिए अपने नाम की। और सभी अकेले दौड़ती हैं घर से, तो मैं भी वहां से दौड़ कर गया। कास्त्रियं ते कल्पदायत वेणुगीत सम्मोहिता आर्य चरितान न चलेत त्रैलोक्यम त्रैलोक सौभगम इदं च निरुच्छ रूपम जद गोद्रुम द्विज मृगा पुलकान्य विभ्रम। महाप्रभु जी का वंशी की आवाज सुनते ही मैं प्रमत्त पागल हो गया और पागल होकर के मैं चला वहां पर गया। देखा जिसे वहां पर सभी गोपियां वहां पर हैं, मैं भी वहां पर पहुंची। मैं समझी जी मैं अकेली जा रही हूं, किंतु वहां पर पहुंचकर देखा जो और देखा क्या, उनके जो श्रृंगार हैं उल्टे पुल्टे हैं। किसी के आंख में, एक ही आंख में आधा अंजन, कोई गले का हार कमर में, पैर का वो पहनने का वो गले में या किसी हाथ में या इधर उधर, वस्त्र किसी के गिर रहे हैं, लटक रहे हैं,
एक अंजन
होश नहीं। सभी दौड़ रहे, कैसे दौड़ रही हैं, यदि किसी का कोई प्यारा से प्यारा आभूषण हो, सबसे अधिक बेस्ट कीमती हो, सामने कोई चोर आकर के चोरी करके जा रहा है और उसको देखा तो उसके पीछे पीछे दौड़े, ऐसे गोपियों के मन के रत्नों को शरीर रूपी पेटारी से लेकर के भागा। कौन भागा, ध्वनि लेकर के भाग और उसका पीछा कर रहे हैं। बंसी भाग करके कहाँ जाएगी, ध्वनि कृष्ण के पास में जाएगी, तो वो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अजगमो अन्नो अन्नम अलक्षितो दमा, सब वहां पर दौड़ ये भी पहुंचे। कृष्ण ने पूछा स्वागत है आप लोग, मेरे लिए आप लोग इतना कष्ट करके आए, स्वागत है। करवामि किंवा, मैं तुम लोगों के लिए क्या करूं। महाप्रभु जी कह रहे हैं भावाविष्ट में अर्ध अवस्था में ये स्वरूप दामोदर जी को समझ रहे हैं कि ये ललिता जी हैं, और विशाखा जी समझा राय रामानंद को, रूप मंजरी को, रूप गोस्वामी को रूप मंजरी, सनातन गोस्वामी को लंग मंजरी के रूप में देख रहे हैं, सबको उसी रूप में देखा है। और उनको कह करके गले पकड़ करके रोते हुए ये सब कह रहे हैं, सब दामोदर को विशेष करके रो करके कह रहे हैं। मैं भी वहां पर पहुंची, कृष्ण ने कहा ये स्वागत है, अच्छी स्वागत हमारे दर्शन करने के लिए आई। मैं तो कुछ बोल नहीं सकी, ये दिल लगी कर रहे हैं या यथार्थ में कर रहे हैं कुछ पता नहीं। उस समय हम लोग सुन रहे हैं कर रहे हैं अच्छा अच्छा, रात अधिक हो गई, तुम लोगों को बंद में घर में जाना चाहिए, विशेष करके स्त्रियों को, पतिव्रता स्त्रियों को कभी भी अकेले किसी पुरुष के साथ में नहीं बैठना चाहिए, तुम लोग घर में लौट। उनका परम धर्म है लंगड़ा लूल्हा जैसा भी कोई हो पति, उसी की सेवा करना हमारी आर्य लल्लाओं का ये परम धर्म है। घर में तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे, रो रहे होंगे, बछड़े और गायें, गायें का दूध नहीं दूने से क्या होगा, समय पर डकारती हैं, तन में दर्द होता है उनका, रख नहीं सकती, और जब बछड़े भी भूखे हैं जल्दी से आप लोग घर में पधार दीजिए, नहीं तो यदि परपुरुष के साथ में रात्रि में अकेले कोई रहे तो इसका ऐसा पाप लगता है जब नरक जाना होता है, और इस जगत में भी दुख होता है उस जगत में भी दुख होता है, इसलिए जरूर आप लोग चलिए। थोड़ी देर के बाद में गोपियों ने कहा राधा जी नहीं कह सकी, क्यों नहीं कह सकी, इसलिए कि वो भाव में इतने विभोर हो गई और इतनी दुखित हो गई कि ललिता विशाखा को ही कहना पड़ा होगा, ये नहीं बोल सकी।
ललिता जी बोली होंगी
वो प्रखर है ना, इसलिए वो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा ये महाप्रभु जी ये सब वर्णन कर रहे क्यों हमको वहाँ चलाया, इसका ये कैफियत देते हुए कह रहे हैं आप जो उपदेश दे रहे हैं ये तो आपके चरण कमलों में ही आपके उपदेश दे रहे हैं, हम लोगों को शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, हम लोग से आप यदि कुछ सीखना चाहें तो आप सीखिए, क्यों आप अपने वचनों के खिलाफ कर रहे हैं, विरुद्धाचरण कर रहे हैं। गीता भागवत इत्यादि सर्वत्र में देखा जाता है और आप कह रहे हैं जो मैं भगवान हूँ, भगवान की ही सेवा तो सबसे उत्तम है, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम भज, और गीता में भी सर्वत्र ऐसा ही कहा ये यथा माम प्रबद्धन्ते ताम तथैव भजाम्यहम, जो जैसा भजन करता है उसको कृष्ण भी वैसे ही भजन करें, और उनको करना चाहिए क्योंकि उनकी वाणी ही ऐसी। इसलिए आप अपना कल्याण चाहते हो, धर्म का विरुद्ध नहीं करना चाहते हैं, तो हम आपको गुरु के रूप में वर्णन करती हैं, पहले गुरु जी की पूजा होगी इसके बाद में और किसी की पूजा होगी, और यदि धर्म का उल्टा पुल्टा होता है जो अधर्म बनती हैं अधार्मिक, तो ये दोष आपका है, क्यों दोष है, इतना सुंदर रूप, इतनी मधुर बंसी की आवाज और अपनी मुख की बोली इतनी मधुर क्यों ले आए हम लोगों के साथ, इसी के लिए वो कह रही हैं कास्त्रियं ते कल्पनायत वेणुगीता, कास्त्रियं स्त्रियों की तो बात ही क्या, वो स्वभाव से कोमल होती है, हम लोग स्वभाव की कोमल हैं, आपका रूप ही ऐसा त्रि जगत में ऐसा नहीं है किसी का जो आपका रूप देख करके, और इस पर भी ये बंसी आती जिसको सुन करके हम लोगों की तो बात क्या, पशु पक्षी की पतंग जितने हैं वो भी हिरणी जो पुरुष को देख करके मनुष्य को देख करके भाग जाते हैं, आज हिरण नहीं भागते, वो जड़ हो जाते हैं चलने वाले, और जड़ जो है वो चेतन हो जाते हैं, सुख पक्षी इत्यादि जितने भी हैं कोयल इत्यादि मोर ये जड़ बन जाते हैं, और जड़ जो जमुना है जो चल नहीं सकती या चलती है उनकी धारा तो वो भी बंद हो जाती है,
स्थावर हो जाती है,
स्थावर बन जाती है, वृक्ष सब ये जड़ हैं उनकी टहनियाँ नीचे झुक जाती हैं, फल फूलों से एकदम भर जाती हैं, कृष्ण का स्वागत करने के लिए एकदम अपने हृदय को दे देती हैं। हिरणे धन्यास मूढ़ मतये अपि हरण्येता, हिरणे भी वैसे एकदम मोहित हो जाती हैं पतियों को सामने लेकर के और प्रणय की भिक्षा मांगते हुए आपकी तरफ। इस तरह से देखते हैं कि जितनी भी जड़ चीजें हैं वो चेतन हो जाती हैं, चेतन भी अचेतन हो जाते हैं, इतना सुंदर ये रूप का माधुर्य किसको आस्वादन होगा, जिसको प्रेम होगा उसको, जितना ही जिसको प्रेम होगा प्रीति होगी, जिसको प्रीति नहीं है उसको कृष्ण का रूप दर्शन करने में भी वो भाव नहीं आया। कृष्ण के रूप को देख करके साधारण लोगों को जो प्रेम होगा, उससे जिसको असाधारण प्रीति है सखाओं का, सखाओं से अधिक होगा यशोदा मैया का, नंद बाबा का, और इनसे भी होगा अधिक गोपियों को। उपजा को उनको देख करके रूप हुआ, किंतु क्षणिक लिए साधारणी प्रेम थी। गोपियों का असाधारण समर्था प्रेम है, समंजसा है उनका, महिषियों का समंजसा माने क्या, बटा हुआ प्रेम है। स्त्री पुत्र में, परिवार में, घर में गोपियों का ये सब नहीं, केवल मात्र कृष्ण के लिए। कृष्ण को वशीभूत होने में समर्थ है, इसलिए उसका नाम है समर्थारथी। और समंजसा, समंजसा क्या,
एडजस्टेड,
उसमें
बराबर
अपने सुख के भोग की लालसा रहती है। कामात्मिका के साथ में वो भी कामात्मिका है, किंतु गोपियां का काम है कृष्ण की प्रीति के लिए। और इनमें कामना क्या है, कभी कभी अपने स्वसुख भोग के लिए भी कामना इनको हो जाती है। ये दोनों में पार्थक्य है, कभी कभी, सब समय नहीं, इसलिए समंजसा है। ये महाप्रभु श्री को कह रहे हैं, जिसको अधिक कृष्ण के प्रति प्रीति होगी उतने ही कृष्ण के रूप का आस्वादन कर सकेगा, उनके माधुर्य को आस्वादन कर सकेगा। राधा जी में सबसे अधिक है, इसलिए सबसे अधिक उनको। साधारण लोगों में प्रेम नहीं, केवल देख करके बस, उतने ही तक, जब तक देखेंगे बस। पांडवों से भी अधिक, उद्धव इत्यादि में, उद्धव आदि से भी अधिक इन गोपियों में है, ब्रजवासियों में गोपियों में। वो कह रहे हैं, कहते 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 प्रेम में विभोर हो गए। मैं वहां पर चला गया और उनके साथ में क्रीड़ा कर रहा था, क्रीड़ा कर रही थी हम लोग, और इसी बीच में तुम लोग हमको पकड़ करके और यहाँ पर लेकर के चले। है हमारा जीवन बिगाड़ गया, इस प्रकार से रोने लगते हैं। इसी तरह से कभी कभी कहते हैं, केवा सुनाइल कृष्ण ना, कानेर भीतर दिया मनेर
बसी लगो आकुल करेल मोर कान।
क्यों कृष्ण नाम सुनाया, हमारा जीवन एकदम गड़बड़ हो गया, अथवा हमारा जीवन उल्लासमय हो गया, क्यों सुनाया? घर की याद नहीं रही, घर सब छूट गया, इसलिए अत्यंत विरह में आतुर हो जाते। रघुनाथ दास गोस्वामी जी घर छोड़ करके आए तो यहीं पर आए। उस समय में राजपुत्र करीब करीब 22-24 वर्ष की उम्र होगी, और भी कम ही, कहाँ 6-7 दिन का, फिर 12 दिन का रास्ता, इतने दिनों में ही रात दिन बिना खाए पिए किसी प्रकार से यहाँ आए। उस समय केस बढ़ गए थे, भिखारी के लड़के जैसे लग रहे थे, कपड़े भी मैले हो गए थे, किंतु सौंदर्य फुट करके निकलता था। जब महाप्रभु आए, उनको देखा, देख करके कहा, रही तुम कैसे यहाँ आ गया, तुम गृह रूपी अंधकूप से, जिसमें टट्टी के कीड़े होते हैं, ऐसे स्थान को छोड़कर के तू यहाँ आ गया? पहले उनको बना किया था जो मत आना, घर मत छोड़ना, अब यहाँ पर कह रहे हैं उल्टा। संसार क्या है, गृह अंधकूप, इसको छोड़कर के तू आ गया? दया मुरड़ पड़ी और महाप्रभु जी के निकट में, महाप्रभु जी ने उनको स्नेह किया और उनको स्वरूप दामोदर यहाँ पर उनके साथ में बैठे थे, उनको हाथों में समर्पण कर दिया। तब से उनका नाम हो गया स्वरूप का रघु,
स्वरूप का रघु।
उस लीला में भी ऐसे ही है, ललिता जी के ये
गण में
तुलसी अथवा रति मंजरी हैं, उन्हीं के गण में है, उनकी सेवा करती हैं, इसलिए उनके हाथों में दे दिया। उन्होंने भक्ति के प्रारंभ से लेकर के भक्ति की महाभाव अवस्था तक के जितने भी भाव होते हैं सब उनको समझाए। महाप्रभु के पास में आते थे, समझ नहीं पाते थे, उनसे प्रश्न करते थे, इनसे प्रश्न नहीं करते। महाप्रभु जी ने कह दिया था, हम जितना जानते हैं उससे अधिक जानते हैं, हमने जो कुछ जाना है इनसे जाना है।
अच्छा,
इसलिए तुम उनसे पूछना जो कुछ भी पूछना हो। और उनको कहा, जैसे आप इसको सब प्रकार से देखेंगे, संभालेंगे, ये सब ये यहीं पर उनको कृपा थी। यहीं पर जो उस दिन बतला रहा था, वल्लभाचार्य आए थे,
ये गंभीरा में
यही
कृष्ण नाम का अर्थ बतला रहे थे, यहीं पर बतलाया कृष्ण नाम का अर्थ नहीं, कृष्ण स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, राधा कांत है, राधा रमण है, और मैं अर्थ नहीं जानता। दूसरे दिन उन्होंने पूछा कि सिद्धा स्वामी के हम टीकाओं को
करेक्शन करके
और मैं दूसरा अर्थ लिखा हूँ भक्ति पर, वो मायावाद दूसरा। उन्होंने कहा कि मायावाद सिद्धा स्वामी को जो नहीं मानता वो वेश्या के समान है, अर्थात तो उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। फिर गदाधर पंडित जी को आदेश दे करके और वल्लभाचार्य जी को गोपाल मंत्र दिलवाया। गोपाल मंत्र एक संबंध है, कृष्ण गोविंद और गोपीनाथ तीनों एक ही हैं, किंतु जब पहली बार मिलते हैं और कृष्ण से संबंध होता है तो उनका नाम होता है मदन मोहन। वो आकर्षण करते हैं ना, अपने सुंदर रूप के द्वारा आकर्षण कर लेते हैं जीवों के हृदय को, उनका नाम होता है कृष्ण ही का नाम
मदन,
क्योंकि आकर्षण किया ना कृष्ण से आकर्षण, किंतु किस चीज से, अपने मदन अर्थात रूप इत्यादि के द्वारा उसको आकर्षण, इसलिए वह मदन मोहन। जब और कुछ स्टेज बढ़ जाएगा हमारे अंदर में प्रेम हो जाएगा, और जब प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करेंगे जैसे गोपियों ने कृष्ण की सेवा की, तो उनके लिए जब राश इत्यादि करेंगे तो वो हो जाएंगे गोविंद, गोविंद की सेवा होगी। गो माने गोप, गोपी, गोधन, गोवत्स इत्यादि, उनके साथ में जो क्रीड़ाशील हैं उनके द्वारा जो कृष्ण की सेवा करते हैं तो वो गोविंद हो जाते हैं, और उनके साथ में व्यवहार होने के बाद में कृष्ण का उनके प्रति प्रीति, इनका उनके प्रति जब प्रीति हो जाती है तो वो गोपीनाथ के रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए गोपाल मंत्र में गोपियों की जो प्राण बल्लभ हैं उनके प्रति हमारी प्रीति हो, उनके चरणों में हम समर्पित करते हैं। उसमें पहले कृष्ण भी आए, आकर्षण उन्होंने किया, फिर सेवा दान दिया, और अंत में गोपीनाथ के रूप में। ये सब शिक्षाएं स्वर्ग दामोदर इत्यादि ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। यहीं पर रूप गोस्वामी जी मिले, पासी है ना,
हरिदास ठाकुर,
हरिदास ठाकुर यहीं से वहां पर चले जाते। हरिदास ठाकुर कभी दर्शन करने के लिए नहीं जाते, बस महाप्रभु जाकर के उनको दर्शन दे आते।
सनातन गोस्वामी भी तो नहीं गए,
नहीं गोस्वामी भी नहीं,
यहीं से चक्र देख करके प्रणाम कर लेते, महाप्रभु जी को प्रणाम कर लेते, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी भी, रूप गोस्वामी भी, तो यहाँ पर सभी भक्तों का मिलन स्थान है, और महाप्रभु के जितने भी भाव हुए वो सब यहाँ पर प्रकाश किया। महाप्रभु के चले जाने के बाद में, महाप्रभु के समय में एक गोपाल गुरु, एक गोपाल नाम का एक लड़का था, ब्रह्मचारी,
छोटा सा
लड़का, महाप्रभु जी के सब प्रकार से सेवा करता है, ये और गोविंद जी दोनों मिलकर के। छोटा बच्चा होने से प्रिय भी है ना, महाप्रभु का बड़ा प्रिय भी था। एक दिन महाप्रभु जी शौच के लिए कहीं गए, ये भी गया पानी लेकर, महाप्रभु जी ने अपनी जीभ को पकड़ लिया बाहर कर। उन्होंने पूछा प्रभु अपनी जीभ किस लिए बाहर कर रहे हैं, आप पकड़ क्यों रहे हैं, तो ये मानती नहीं है अभी हम शौच को जाएंगे और ये कृष्ण 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 कर रही, इसलिए पवित्र अवस्था में तो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा यदि उसी समय किसी का प्राण निकल रहा हो तो वो क्या करेगा, क्या करना चाहिए उसको। तो महाप्रभु जी ने उसको आलिंगन करके आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारा नाम हो जाएगा गोपाल
गुरु,
गोपाल नहीं गोपाल,
छोटे से थे
बक्रेश्वर पंडित जी के शिष्य थे। बक्रेश्वर पंडित जी महाभाव में उद्दंड होकर के नृत्य करते थे, महाप्रभु के साथ में रहते थे। तो जब महाप्रभु जी चले गए तो ये लोग सब अनाथ हो गए, गदाधर पंडित भी चले गए, स्वरूप दामोदर भी चले गए, धीरे 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 सब भक्त लोग जाने लगे। उस समय में ध्यानचंद्र जी उनके शिष्य थे,
गोपाल गुरु जी के,
ये यहीं पर रहते थे, उनकी सेवा करते थे, बहुत ही विद्वान, प्रखर विद्वान भी थे, जैसे गोपाल गुरु जी थे विद्वान भी थे, बहुत रसिक भक्त भी थे, महाप्रभु के प्रति अगाध श्रद्धा थी। जब उनके गुरु भी चले गए उन्हें गोपाल गुरु चले गए तो ध्यानचंद्र जी रहे। जगवतार में उन्हें ध्यानचंद्र और गोपाल गुरु का वो सब लिखा है। तो ये बड़े विलाप करने लगे, बड़े दुखी हो गए। जब दुखी हो गए, जब रहा नहीं गया, अब इनके भी प्राण छूटने लगे। तो कोई वृंदावन से भक्त लोग आए, बोले जी आपके गुरु जी को तो मैंने, गोपाल गुरु को तो वृंदावन में देखा, धीर समीर के पास में।
ध्यानचंद को
गोपाल गुरु के बारे में
अब उनको बहुत आनंद हुआ और वो पैदल चल पड़े। पैदल चलते चलते जितने कितने दिन में पहुंचेंगे, वहां जा करके देखा धीर समीर पर एक टीले के ऊपर में बैठे हुए हैं और हरिनाम कर रहे हैं। आंखों से आंसू की धारा गिर रही है, भाव मुझे गुरु जी को प्रणाम किया जी, गुरु जी हमको छोड़ करके आप यहाँ चले आए, मैं आपके लिए गिरा में तड़प रहा हूँ, आप चलिए उधर। उन्होंने कहा जी आप वृंदावन छोड़ करके हम नहीं जाए, जब तुमको कोई जरूरत होगी तुम हमारा ध्यान करना, मैं वहाँ पर खुद आ जाऊँगा और सब व्यवस्था मैं करूँगा। ऐसे ये सिद्ध महात्मा लोग, शरीर यहाँ मालूम हुआ छुड़ा, किंतु शरीर छुड़ा नहीं, लोगों के लिए दिखला दिया ये शरीर छोड़ दिया और कैसे वो वृंदावन में जाकर।
ध्यानचंद को लगा कि शरीर छोड़ दिया उनके गुरु ने और यहाँ से वो वृंदावन चले गए,
वृंदावन
और उनको भी दिखाई दिया, बाद में ध्यानचंद को भी मिले।
इस तरह से अनुभूति होती। इसलिए ऐसे जो महापुरुष लोग होते हैं वो मरते नहीं हैं, ये जीवन मुक्त होते हैं। जीवन मुक्त कृष्ण के परिकर होते हैं, दिखला देते हैं जैसे ये हमारा भी ऐसे तुम्हारे जैसा मैं मरणशील आदमी हूँ, हमको ऐसा साधन भजन करना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं। तो उन्होंने जाकर के फिर उनका दर्शन किया और फिर उनके कहने से रोते कलपते फिर आकर के उनकी जो सेवा थी वो सब सेवा कर। ये सब वैसा पवित्र स्थान है, यहाँ पर की धूली लेने से हम लोग इसीलिए आते हैं कि भगवान की भूमि या भक्तों की भूमि में वो शक्ति होती है जो शक्ति को संचार करती है, जो साधन भजन से नहीं होगा। साधन भजन से भक्ति नहीं होती है। एक हृदय के अज्ञानता को और अनर्थ को बस छुड़ाना ही हम लोगों के लिए साधन है, और भक्ति जो आएगी वो अपने आप कृष्ण के समान हुआ है,
कृपा से
अपने आप कृपा करके आएगी या महत्पुरुषों की कृपा से आ जाएगी। कोई ऐसा महत्पुरुष हो, नारद जी इत्यादि हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो लोग यदि दया करेंगे, दया करें मैंने भक्ति से प्रार्थना करी इसके हृदय में आ जाओ। और एक चीज़ क्या, जहाँ पर कि भगवान लीलाएं हुई हैं, भक्तों की लीलाएं हुई हैं, जो परम सिद्ध हैं, जैसे ये स्थान है वृंदावन में केशी घाट है, बंसी भट है, सेवा कुंज है, श्रृंगार भट है और सब निधुवन है, ये सब क्या चीज़ है,
परम सिद्ध स्थान
वृंदावन में सर्वत्र ही राधा कुंड, भांडी वन, राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ, श्याम कुंड, ये सब कृष्ण की क्रीड़ा भूमि, बलदेव प्रभु जी स्वयं उस रूप में है, उनकी चरण की धूली वहाँ पर पड़ी हुई है, वो सब भगवत धाम भगवान के समान है। उनसे यदि प्रार्थना करें, उसकी धूली लें, नहीं लें तो भी वो बैठेंगे तो लगेगी ही झाड़ने की जरूरत, कितना झाड़ेंगे, वातावरण में वो सब प्रेम उनका है, उनकी कृपा है। इसलिए हम लोग आते हैं, यदि उन धूलों की भी दृष्टि हम लोगों पर पड़ जाए तो हम लोग कृतार्थ हो जाए। साधन भजन करके देखा, एक क्रोध को ही हम लोग नहीं हटा सकते, एक कामना को नहीं हटा सकते, कोई चीज को नहीं कुछ कर सकते। इसलिए यदि इस भूमियों की कृपा हो, कृष्ण का ये वरदान है, यदि किसी को प्रेम नहीं होता है तो कृष्ण की जहाँ लीलाएं हुई हैं, अब कृष्ण से बढ़ करके महाप्रभु है ना, कृष्ण अकेले हैं और महाप्रभु राधा और कृष्ण दोनों हैं, वो भी करुणा वितरण करने के लिए आए हैं। इस स्थल में आने से वो कृपा कर देंगे, इसलिए हम लोग आते हैं, साधन भजन के लिए नहीं, जैसा अहत की कृपा कर दें हम लोगों के हृदय में प्रेम। और जब तक वो नहीं होगी ना, हरि नाम में भी रुचि और प्रीति नहीं होगी, रस उसमें प्राप्त नहीं होगा, भागवत पढ़ने में भी नहीं होगा। कृष्ण साथ साथ आ जाएंगे ना, यदि आधा रात में आ जाएंगे तो कहेंगे जी प्रभु आप क्यों आधा रात में आए,
सो रहे थे।
इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं महाप्रभु जी और उनके परिकर लोग बड़े उदार हैं, हमारे ऊपर में कृपा करें। ये सिद्ध स्थान है, महाप्रभु यहाँ पर बैठे होंगे, वहाँ पर तो बैठे ही थे, यहाँ पर सब जगह भक्त लोग सब बैठते थे, रघुनाथ जी को, रूप गोस्वामी को, सब लोगों को यहीं पर दया उन्होंने किया। आज हम लोग का परम सौभाग्य इस स्थान में आए, हम लोग यहाँ के धूल लेकर के अब चले वहाँ गंभीर आने से। गौर प्रमाण नंदन गौर हरि की जय, गंभीर आदिला की जय। रहस्य से रहस्य समस्त भावों का उद्घाटन हुआ है।
देखते प्रारंभ थे आ गुरु महाराज जो डिक्टेशन उन्हें लिखते हैं, तो गुरु महाराज जी अनुरूप से कथा बोलते बोलते और अंतिम संपादकीय देवर जन बाउन महाराज ये कलम हाथ बसे आछे।
कबे नीताई चांदे करुणा होइबे,
आर कबे नीताई चांदे करुणा होइबे,
आर कबे नीताई चांदे करुणा होइबे।
संसार बास नामो कबे तुच्छ होबे,
संसार बास नामो
विषय छाड़िया कबे
तुच्छ होबे,
विषय छाड़िया
शुद्ध होबे मन, विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मन, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन,
कबे हम हे रब श्री वृंदावन,
कबे हम हे रब श्री वृंदावन,
रूप रघुनाथ पदे आकुती,
रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुती,
कबे हम बुझब से जुगल प्रीति,
कबे हम बुझब से जुगल प्रीति,
रघुनाथ पदे रहो मोर आश,
रूप रघुनाथ पदे रहो मोर आश,
रूप रघुनाथ पदे रहो मोर आश,
रूप रघुनाथ पदे
रहु प्रार्थना करे सुर
प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास,
प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास,
प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास,
प्रार्थना कर ये सदा नरोत्तम दास
नव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी
वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी
वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी
वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी
पद छाया शोध हे आमारे
दिया पद छाया शोध हे आमारे
दिया पद छाया शोध हे आमारे
दिया पद छाया शोध हे आमारे
मारो चरण धरी
तुम्हारे चरण
ছয় গুণ দেহ দাসে
ছয় দমি ছয় দোষ সোধি ছয় গুণ দেহ দাসে
ছয় সৎসঙ্গ দেহ হে আমারে
ছয় সৎসঙ্গ দেহ হে আমারে আমার নাহি পাইবল হরি নাম সংকীর্তনে
একাকি আমার নাহি পাইবল হরি নাম সংকীর্তনে
একাকি আমার নাহি পাইবল হরি নাম সংকীর্তনে
তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু কৃষ্ণ
তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া
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 দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে
দেহ কৃষ্ণ নাম
আমি তো কঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি
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 ভাই তব পাছে পাছে
ভাই তব পাছে পাছে
বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি
বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি পদ ছায়া শোভে আমারে চরণে ধরি তোমার চরণে ধরি
বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসী করুণা করি
বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসী করুণা
হরে হরে